आमोस अध्याय एक। हम एक ऐसे चरवाहे के बारे में देखेंगे जिसको परमेश्वर ने बुलाया कि वो उत्तरी राज्य इसराइल को उसका वचन सुनाए। तो आइए बाइबल में आमोस की पुस्तक खोल लें। पहले पद में आमोस अपना परिचय देता है। आमोस अध्याय एक पद एक। तकोवा वासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था। तकोई एक छोटी घाटी है जो बेतलहम के परिवेश से नीचे मृत सागर की ओर जाती है। यदि हम हेरोदास के किले पर जो उसने बेतलहम के पूर्व में बनवाया था खड़े हो तो हम तकोई की घाटी को देख सकते हैं। आमोस यहीं से आया था। वो एक चरवाहा था, परंतु अध्याय सात में वो कहता है कि वो फल तोड़ने वाला था। वो गुल्लर के फल तोड़ता था। वो ना तो नबी था और ना नबी का बेटा। वो पुरोहितों की वंशावली से भी नहीं था। वो हमारे जैसे एक साधारण मनुष्य था। आमोस जब भेड़ों की रखवाली कर रहा था तब परमेश्वर ने उससे कहा कि वो उत्तरी राज्य में जाकर वहां के लोगों को उनके भविष्य के बारे में उसका संदेश दे। परमेश्वर का नबी आमोस अचानक ही बेतेल में प्रकट होता है। इससे पहले वो केवल एक चरवाहा और फल तोड़ने वाला था, परंतु परमेश्वर ने उसे बुलाया और वो आज्ञा पालन करके इसराइल में भविष्यवाणी करने लगा। ये आमोस के वचन हैं। आमोस अध्याय एक पद एक में आगे लिखा है, जो उसने इसराइल के विषय में दर्शन देकर कहे। हमें भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के आरंभ में प्रायः ये पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर के वचन जो नबी के द्वारा कहे गए। लेकिन आमोस ऐसा नहीं कहता है, ये परमेश्वर का वचन है। वो कहता है, तेकोआ वासी आमोस के ये वचन हैं जो उसने दर्शन देखकर कहे। इस प्रकार वो अपनी भविष्यवाणियों पर परमेश्वर का मोहर लगाता है जो उसने दर्शन देखकर कहे। आमोस ने उत्तरी राज्य इसराइल के संबंध में दर्शन देखे थे और ये दर्शन उसे परमेश्वर ने दिखाए। आमोस अध्याय एक पद एक में आगे लिखा है, यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में। इसका अर्थ यह है कि उसकी सेवकाई यशायाह से कुछ समय पहले ही की है, क्योंकि यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी की सेवकाई उज्जियाह राजा की मृत्यु से आरंभ की। देखिए यशायाह अध्याय छह, उज्जियाह की मृत्यु के वर्ष मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। यशायाह की भविष्यवाणियों का समय राजा हिजकिय्याह का राज्यकाल था। उज्जियाह यहूदा का एक समृद्ध राजा था। उसने 52 वर्ष राज्य किया था। आमोस अध्याय एक पद एक में आगे लिखा है, और योआश के पुत्र इसराइल के राजा यरोबाम के दिनों में। वो भविष्यवाणी के समय को और भी आगे दर्शाता है। पद एक के अंत में लिखा है, भूईडोल से 2 वर्ष पहले इसराइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। इसराइल में लगभग 810 से 792 ईसा पूर्व के मध्य में एक भयानक भूईडोल हुआ था जिसने पूरे क्षेत्र को उजाड़ दिया था। भूईडोल इतना भयानक था कि जकरिया कहता है कि लोग डर कर उस स्थान से दूर भाग गए थे। यशायाह भी इस भूईडोल का उल्लेख करता है जिसने उस पूरे राज्य को हिला दिया। यहां भी इस भूईडोल का संदर्भ है। इसका अर्थ ये हुआ कि आमोस द्वारा दी गई ये भविष्यवाणियां इस बड़े भूईडोल से लगभग 2 वर्ष पहले की थी। इस प्रकार हम उसकी सेवकाई का कार्यकाल 800 ईसा पूर्व 1-2 वर्ष आगे पीछे के लगभग मान सकते हैं। जहां तक राष्ट्र के उत्थान का सवाल है, यरोबाम इसराइल के राजाओं में सबसे अधिक सफल राजा था, जिसने इसराइल को समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। यरोबाम के समय इसराइल आर्थिक रूप में बहुत दृढ़ था, परंतु आत्मिक क्षेत्र में वो पिछड़ा हुआ था। ऐसे समय में आमोस उन्हें परमेश्वर के लिए जगाने आया था, अर्थात उनमें आत्मिक जागृति हेतु वो भविष्यवाणी के आरंभ में घोषणा करता है, यहोवा। आमोस अध्याय 1:2, यहोवा सियोन से गरजेगा। जब मसीह यीशु फिर से आएगा, तब आमोस कहता है वो सियोन से गरजेगा। योवेल और होशे ने भी यही कहा था, और अब आमोस भी यही कह रहा है। आमोस अध्याय 1:2-3, और यरूशलेम में अपना शब्द सुनाएगा, तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी, यहोवा यू कहता है। अब परमेश्वर कहता है, दंड इसराइल के चारों ओर के देशों पर भी आएगा, और प्रत्येक देश के बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। आमोस अध्याय 1:3 में आगे लिखा है, दमिश्क के 3 या 4 अपराधों, वो प्रत्येक राष्ट्र के विरुद्ध 3 आरोप स्पष्ट नहीं करता है, 3 क्या वरन 4, ये कहने का एक तरीका है। उसके कहने का वास्तविक अर्थ यह है कि परमेश्वर के कोप का प्याला भर गया है और दमिश्क पर दंड आने वाला है। दमिश्क सीरिया का सर्वप्रथम राजधानी है। आमोस अध्याय 1:3 के अंत में लिखा है, दमिश्क के अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। अशुरों की सेना लोहे के रथों पर सवार होकर गिलाद आई और गिलाद का नाश कर दिया। आमोस अध्याय 1:4, इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेन-हदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। जब एलिया नबी रानी इजबेल से जान बचाकर भाग रहा था, उसने अपने आप को होरे पर्वत की एक गुफा में छिपा लिया था। तब परमेश्वर का वचन एलिया नबी के पास पहुंचा, एलिया तेरा यहां क्या काम? वो सच में इजबेल से छिप रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। उसने कहा, मुझे परमेश्वर यहोवा के निमित्त जलन हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सारे नबियों को मार डाला और मैं ही अकेला रह गया हूं, और अब वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। परमेश्वर तू संकट में है, मुझे छोड़कर तेरे प्रतिनिधि वहां कोई और नहीं है, और अब वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन फिर एलिया के पास पहुंचा, एलिया तेरा यहां क्या काम? एलिया को पहली बार उसका प्रश्न समझ में नहीं आया था, इसलिए प्रभु ने फिर पूछा। वो अब भी नहीं समझा और वो अधूरा उत्तर उसने फिर दिया। परमेश्वर ने उससे कहा, एलिया लौटकर दमिश्क को जा और वहां आराम का राजा होने के लिए बेन-हदद के स्थान पर हजाएल के अभिषेक कर। दूसरे शब्दों में तू यहां कुछ नहीं कर रहा है, मेरे पास तेरे लिए कुछ काम है, यहां से निकलकर काम पर चल। परमेश्वर ने नबी को धर्म का काम करने की आज्ञा दी। अब जब एलिशा हजाएल का अभिषेक और भविष्यवाणी करने आया, एलिशा ने रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? एलिशा उत्तर दिया, मैं बुराई देखता हूं जो तू परमेश्वर के लोगों के साथ करने वाला है। मैं देखता हूं कि उनके जवानों को तलवार से घात करेगा और उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। मैं उस भयंकर निर्दयता को भी देखता हूं जो तू परमेश्वर के सेवकों के साथ करने जा रहा है। हजेल ने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो ऐसा काम करूं? और हजेल बेचैन हो गया। फिर भी वचन बताता है कि हजेल ने इसराइल के साथ ऐसा ही किया था, इसी कारण उसके दंड का समय आ गया था। 3 या 4 अपराध के कारण दमिश्क के विरुद्ध न्याय से बच नहीं पाएगा। परमेश्वर दंड अवश्य देगा। परमेश्वर अपने दंड का वर्णन करता है। इस राजा का अभिषेक एलिशा ने किया था, वो निर्दयी राजा था। मैं हजेल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेन-हदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे, जो उसका उत्तर अधिकारी था, जिसे उसने सिंहासन प्राप्त करने के लिए मरवा डाला था। आमोस अध्याय 1:5। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहने वालों को और एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नाश करूंगा और आराम के लोग बंधुए होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। कीर अशूरों का नगर था, ठीक वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने आमोस के द्वारा कहा था। अशूर आए और उन्होंने असीरिया आराम को पराजित किया तथा उसका नाश किया। उन्होंने दमिश्क वासियों को बंदी बनाया और कीर ले गए। इस प्रकार आमोस की भविष्यवाणी ज्यों की त्यों पूरी हुई। अब वो पेलिस्तियों और उनके राष्ट्र के विरुद्ध भविष्यवाणी दे रहा है। पेलिस्तियों के 5 महानगर थे। अब मेरे विचार में उनमें से 4 का उल्लेख इस भविष्यवाणी में किया गया है। गाजा पेलिस्तियों का मुख्य नगर था। फिर एक्रोन, अश्दोद, एस्कलोन, ये पेलिस्तियों के मुख्य नगरों में थे। आमोस अध्याय 1:6। यहोवा यूं कहता है, अजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। ये आरोप परमेश्वर उनके विरुद्ध लगाता है। 5 में आगे लिखा है, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। उन्होंने परमेश्वर के लोगों को जीता और बंदी बनाकर ले गए या एदोमियों को बेच दिया जो उनके पैतृक शत्रु थे। आमोस अध्याय 1:7-8। इसलिए मैं अजा गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन नाश हो जाएंगे। मैं अश्दोद गढ़वाला नगर के रहने वालों को और एश्कलोन तटीय प्रदेश के राजदंडधारी को भी नाश करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिस्ती लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वचन है। आप में से कितने लोग पलिस्तियों से इन दिनों में मिले हैं? 1 से भी नहीं। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। पलिस्ती मिटा दिए गए थे, वे अब नहीं रहे। आमोस अध्याय 1:9। यहोवा यूं कहता है, सोर के 3 अपराधों। सोर समुद्र तट का नगर, जो प्राचीन सिदोनियों का मुख्यालय था। ये बहुत धनी, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उनके समुद्री जहाज भूमध्य सागर पर शासन करते थे। वे पूर्व से माल लेकर यूरोप की मंडियों में बेचते थे। सोर बराबर इसराइल का मित्र बना रहा। दाऊद और हीराम ने एक वाचा बांधी थी, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान ने भी बनाए रखी थी। सोर के राजा हीराम ने दाऊद के महल और फिर सुलेमान के मंदिर के लिए देवदार की लकड़ियां भेजी थी, लेकिन समय के साथ सोर भी इसराइल के विरुद्ध हो गया था। इसलिए सोर के विरुद्ध ये भविष्यवाणी है, यहोवा यूं कहता है, सोर के तीन अपराधों। आमोस अध्याय 1:9 में आगे लिखा है, वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया। वही दंड जो पलिश्तियों के लिए था, तो भी वो कहता है, आमोस अध्याय 1:9 के अंत में लिखा है, और भाई किसी वाचा का स्मरण ना किया। दाऊद और हीराम के बीच एक सद्भावना की वाचा बांधी गई थी और हीराम दाऊद का प्रशंसक था, लेकिन अब उन्होंने वो वाचा तोड़ दी। हम देखते हैं कि परमेश्वर का दंड इन विभिन्न राज्यों पर आया, असीरिया, पलिस्तीन, सोर, एदोम, अमोन और मोआब। इन पर दंड इसलिए आया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोग अर्थात इसराइल के वंशजों के साथ बुरा व्यवहार किया। अब परमेश्वर के लोग गलत थे और परमेश्वर अपनी प्रजा को उनका दंड दे रहा था क्योंकि वे गलती पर थे, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था, पहला इतिहास अध्याय 16:22, मेरे अभिषक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, उत्पत्ति अध्याय 12:3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। मैं चिंता नहीं करता परमेश्वर की संतान कितनी गलत है, मैं उन्हें छू नहीं सकता। मेरे बच्चे शरारती है, परंतु आप उन्हें छू नहीं सकते। मेरी संतान कितनी भी गलती हो, उन्हें सुधारना मेरा काम है। अगर कोई और आकर मेरे बच्चों को छुए तो मैं उनके बचाव में अवश्य आऊंगा, और परमेश्वर ने ये करके दिखा दिया। वे जब भी गलती करते थे उन्हें दंड मिलता था, उनका दंड परमेश्वर ने अपने लिए सुरक्षित रखा। मैं उनको सुधारूंगा, तुम उनको मत छूना। आज भी मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर उनको आशीष देता है जो इसराइलियों को आशीर्वाद देते हैं, और जो उन्हें कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और न्याय के दिन जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, इसके बारे में मत्ती की पुस्तक के 25वें अध्याय में वर्णन किया गया है। न्याय के दिन जब मसीह दोबारा आएगा, सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और उनका न्याय इसराइल देश के साथ किए गए उनके व्यवहार के अनुसार किया जाएगा। कोई भी देश जिसने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हाथ डालने की हिम्मत की, समृद्ध नहीं रहा है। मुझे बहुत सावधान रहना है कि जो बातें मैं कहता हूं वे इसराइल राष्ट्र के विरुद्ध ना हो। यहां परमेश्वर प्रत्येक का न्याय कर रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों से बुरा व्यवहार किया। आमोस अध्याय 1:10, इसलिए मैं सोर शहरपना पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। इसका कुछ भाग नबूकदनेस्सर के द्वारा और शेष सिकंदर महान के द्वारा पूरा हुआ और सोर नष्ट कर दिया गया। एहेस्केल सोर के विरुद्ध और विस्तार से भविष्यवाणी करते हुए बताता है कि उस पर दो आक्रमण होंगे, पहला नबूकदनेस्सर द्वारा और दूसरा सिकंदर महान के द्वारा। आमोस अध्याय 1:11, यहोवा यूं कहता है, एदोम के तीन अपराध क्या वरन चार अपराधों के कारण? एदोम इसराइल और मृत सागर का दक्षिण पूर्वी भाग है जो आज काफी उजाड़ और वीरान है। आमोस अध्याय 1:11 में आगे लिखा है, मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया ना की। एदोमी एसाव के वंशज थे जो याकूब का भाई था, और इसलिए परमेश्वर उनको अभी भी भाई के संबंध से देखता है, क्योंकि याकूब और एसाव दोनों जुड़वा भाई थे। लेकिन जो जलन याकूब के प्रति एसाव के मन में थी वो उसके वंशजों में भी बनी रही और खत्म नहीं हुई थी। एदोमी इसराइल के पारिवारिक शत्रु थे। जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने इसराइल पर आक्रमण किया। जब जब इसराइल पर उत्तर से शत्रु ने आक्रमण किया तब तब उन्होंने दक्षिण से आक्रमण किया। वे इसराइल को नष्ट करने के हर मौके का फायदा उठाते थे। एदोमियों के मन में इसराइल के विरुद्ध एक नफरत जलती और सुलगती रहती थी। अंतिम एदोमी हेरोदेस था। हेरोदेस महान के बाद एदोमी इतिहास से विलोप हो गए। हेरोदेस एदोमी था। परमेश्वर ने न्याय का वचन दिया। आमोस अध्याय 1:11 से लेकर 13 तक, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया ना की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोसरा के भवन भस्म हो जाएंगे, यहोवा यूं कहता है। अब हम अमोनियों की ओर मुड़ते हैं। अमोन शब्द का उच्चारण बदल गया परंतु लिखा वैसे ही जाता है। अमोन वर्तमान जॉर्डन की राजधानी है। अमोन और अमोनियों का भाग यरूशलेम के सीधे पूर्व में अफ्रीका की महान दरार के पार है, जो आज अमोन कहलाता है। आमोस अध्याय 1:13 में आगे लिखा है, अमोन के 3 या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा बड़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भवती स्त्रियों का पेट चीर डाला। गिलाद को असीरिया ने बुरी तरह हराया और इस प्रकार उन्होंने दंड पाया। अब अमोनियों की बारी आती है। आमोस अध्याय 1:13 के मध्य भाग में लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा बढ़ा लेने के लिए, मैं इसे रोचक मानता हूं, वे लोग पश्चिमी तट पर अपने सिवाने को बढ़ाने आए हैं। समय बहुत नहीं बदला है, अभी भी समस्याएं हैं, क्योंकि 1967 की लड़ाई में जॉर्डन उत्तरी तट से हटा दिए गए और आज भी वे दृढ़ संकल्प है कि उत्तरी तट को ले लिया जाए। आमोस अध्याय 1:14, इसलिए मैं राबा की शहरपना में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वो आंधी वरन भावंडर का दिन होगा, और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंदुआई में जाएगा, यहोवा का यही वचन है।